pareja Club de 21.
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।
कोविड-19 करीब 1.5 साल का वक्त गुजर चुका है जब से पूरी दुनिया कोविड कोरोना पेंडेमिक शब्दों को लगातार दोहरा रही है, उसके दुष्परिणामों को झेल रही है और लगातार इस जानलेवा बीमारी से बचने के प्रयासों में जुटी हुई है। इस लंबे अंतराल में इंसान ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, अपने अपने स्तर पर लोगों को बचाने की कोशिश की, लोगों से डिस्टेंस बनाकर रखने की कोशिश की। जब तक इस खतरनाक बीमारी के लिए कोई दवा नहीं आई थी, वैक्सीन नहीं आई थी, तब तक लोग घबरा रहे थे और वैक्सीन आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन वैक्सीन आने के बाद अब भी लोग घबरा रहे हैं कि हम इस वैक्सीन को लगाएं या ना लगाएं। भारत सरकार इस वैक्सीनेशन प्रणाली के 2 चरण आरंभ कर चुकी है और अब तीसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 45 से 60 साल तक की उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाने वाला चरण। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न है, जिज्ञासाएं हैं, किस बीमारी वालों को वैक्सीनेशन कराना है, किस बीमारी वालों को कब कराना है, कैसे कराना है, कहां जाकर कराना है। इन सब जानकारियों को लेने के लिए आज हमारे साथ हैं अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष माइक्रोबायोलॉजी विभाग एवं प्रभारी वायरोलॉजी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर के डॉक्टर रमेश मूर्ति। नमस्कार डॉक्टर साहब।
संजय जी नमस्ते।
कोरोना एक बार फिर से उसकी लहर आ चुकी है, उसके 2 राउंड्स वैक्सीनेशन के आरंभ हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं तो हम नहीं कह सकते। पहले राउंड में आप डॉक्टर्स को, पहली पंक्ति के लोगों को वैक्सीनेशन किया गया, दूसरे राउंड में 60 साल से ऊपर वालों को और कुछ खास बीमारी वालों को, बड़ी बीमारी वाले 45 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। लेकिन इसके बावजूद कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है और अब 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाना का काम आरंभ किया जा रहा है।
हाँ।
तो उपलब्ध वैक्सीनों में क्या करना चाहिए, जनता को क्या करना चाहिए और इसका मतलब जो वैक्सीनेशन 45 साल की उम्र से अधिक व्यक्तियों का हो रहा है उसका आधार क्या है?
संजय जी आपने बहुत सही कहा कि कोरोना कहीं गई नहीं थी, फिर से दूसरी लहर प्रारंभ हो चुकी है और एक सामुदायिक संक्रमण की स्थिति जो हम देख रहे हैं, तो उससे बचाव के लिए भारत सरकार ने एक बहुत महती सोच और उसके साथ एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू किया है। इसका आधार यह है कि दायरा बढ़ाकर बचाव और संक्रमण के तरीकों को स्थापित करना, जिसे हम सामुदायिक प्रतिरोधी क्षमता कहते हैं या हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, उसकी स्थिति लाकर ही हम इस दूसरी लहर जो अभी चल रही है और जो काफी तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई दिख रही है उसे हमें रोकना है। आपने वैक्सीनों में फर्क और जनता क्या करे की बात की। भारत सरकार के द्वारा 2 ही प्रकार की वैक्सीन अभी मान्यता प्राप्त है और लक्षण युक्त में ये दोनों ही वैक्सीन 60 से 85% बचाव के रूप में कारगर साबित हो रहे हैं। तो अभी तो वैक्सीन लगाना ही बचाव और फैलाव रोकने का प्रमुख जरिया है और लक्षण होने पे इलाज करना है।
तो ये जब आप बोल रहे हैं वैक्सीन 2 ही तरह की अभी उपलब्ध है, तो क्या हर जगह पे हर शहर में दोनों वैक्सीन है या जरूरत के हिसाब से कहीं पे सिर्फ 1 उपलब्ध है?
कहीं पर सिर्फ 1 भी उपलब्ध है, लेकिन भारत सरकार ने प्रयास किया है। आप जानते हैं जैसा कि आपने पूर्व में कहा था कि पहले जो प्रथम पंक्ति के हेल्थ वॉरियर्स हैं उनके लिए कोविशील्ड आई थी और उसके 1 महीने के बाद फिर कोवैक्सीन भी आ गई है। तो इस प्रकार दोनों ही वैक्सीन लगाए और दिए जा रहे हैं। उपलब्धता जरूर घट बढ़ सकती है, लेकिन अभी वर्तमान में दोनों ही मान्यता प्राप्त वैक्सीन लगभग सभी जगह मुहैया कराए जा रहे हैं।
अच्छा, तो और कोई नई वैक्सीन आने की भी संभावना है?
जी हाँ, अभी तो मॉडर्ना की और इसकी जो इंजेक्टेबल है उस फॉर्म में है। एक बहुत ही एक्साइटिंग और एक बहुत ही हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जिसका इंतजार कर रहे हैं वो है नेजल स्प्रे जो आ जाएगी। तो नाक के माध्यम से भी हम अगर वैक्सीनेशन दे पाए तो और दायरा बढ़ाने में और संक्रमण के इस फैलाव और बचाव को आगे बढ़ाने में गति मिलेगी।
तो अभी जितना वैक्सीनेशन होना चाहिए भारत की पॉपुलेशन में, जितना टारगेट रखा गया था, क्या वो पूरा हो पा रहा है?
नहीं हो पा रहा है। मुझे इस बात का थोड़ा दुख अवश्य है। जनता भी अपनी जिम्मेदारी से बच रही है, जहां पर है वहां नहीं जा रहे हैं और कुछ जगहों पे एक जबरदस्ती एक कमी एहसास कराया जा रहा है। तो दोनों ही बातें हैं। भारतीय जनमानस को भी जिम्मेदारी के साथ जहां जहां वो रजिस्टर हो जाते हैं स्थिति देखने के लिए कि वैक्सीन के लिए बुलावा आता है कि नहीं, और बुलाए जाने पर वे नहीं जाते, कुछ बुजुर्गों में भी संदेह की स्थिति बनी रहती है। तो सरकार तो अपने प्रयास कर रही है, या लॉजिस्टिक इतना बड़े अमले को यहां से वहां ट्रांसपोर्ट करना और ले जाना बहुत कठिन काम है, दुरूह काम है। जो भी उपलब्ध सुविधाएं हैं और वैक्सीन की उपलब्धता है उसका तो भरपूर 90-100% उपयोग होना ही चाहिए।
जी हाँ बिल्कुल, लोगों के मन में आज भी एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जबकि इतने हमारे देश के वैज्ञानिकों ने और सारे डॉक्टर्स ने लगवा लिए हैं, वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत से खोज करके ये वैक्सीन बनाई है। जब तक नहीं आई थी तब तक वैक्सीन का इतना इंतजार हो रहा था, लेकिन जनता का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है ऐसा हम सोचते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लेनी चाहिए?
जी हाँ, बहुत सारी स्टडीज हो गई हैं और गर्भवती महिलाओं को अवश्य वैक्सीन लेनी चाहिए। मैं काफी जोर देके कह रहा हूँ, इसके कोई पृथक से गर्भवती महिलाओं के लिए कोई साइड इफेक्ट्स हैं ऐसी कोई बात नहीं है। जो सामान्य से लक्षण जो रैश, हल्का सा दर्द या किन्हीं केसों में बुखार, उसको छोड़ दें, वो मात्र 0.1% है। उन स्थितियों को अगर हम याद रखे, इसके बाकी के 90-95% क्षमता को अगर नजरअंदाज करते हैं तो ये गलत होगा। इसलिए गर्भवती महिलाओं को भी जरूर वैक्सीन लेना चाहिए।
अच्छा अच्छा, और जिन व्यक्तियों को एक बार कोविड की बीमारी हो चुकी है वो ऐसा मान रहे हैं कि उनका एंटीजन तैयार हो चुका है, तो क्या उनको वैक्सीन लेनी है या नहीं?
जिन व्यक्तियों को कोविड-19 की बीमारी हो चुकी है उन्हें भी वैक्सीन लेना है, लेकिन 4-6 हफ्ते रिकवरी के बाद।
अच्छा।
अभी लेकिन लेना जरूरी है, इसमें थोड़ा डिले मतलब इसलिए करना है कि वो अभी रिकवर होकर आ रहे हैं और वो टोटल उनकी जो इम्यून स्टेटस है वो ज्ञात होते होते 4 हफ्ते लगेंगे, लेकिन उनको भी जो अगर कोरोना प्रभावित या पॉजिटिव हो चुके हैं उन्हें भी 4-6 हफ्ते के बाद अवश्य लेना है।
मतलब जो लोग पिछले साल कोविड से ग्रस्त हुए थे और जिनकी स्थिति अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है उन लोगों को भी लेना ही है?
जी हाँ बिल्कुल लेना है, संक्रमित होने के बाद रिकवर होने के बाद भी लेना है।
अच्छा, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को वैक्सीन लेना है ऐसा कहा जा रहा है, तो ये गंभीर बीमारियां कौन सी हैं और उन लोगों को कब लेना है?
गंभीर बीमारियां किडनी डिसीज, लिवर डिसीज, कुछ खास केस में आस्थमा, हाइपरटेंशन, सीवियर मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं, तो जो इन गंभीर बीमारियों और ऑर्गन या अंग जनित बीमारियों से पीड़ित हैं उन्हें हम गंभीर बीमारी कहेंगे, उन्हें भी लेना है, लेकिन उनके लिए तो वो कम से कम 4-8 हफ्ते के बाद, मतलब उनकी दवाइयां चालू होने के बाद डॉक्टरी सलाह के अंतर्गत ही उन्हें दवाइयां वैक्सीन लेना है, और दवाइयों की डोज को डॉक्टरी सलाह के बाद कुछ समय के लिए बंद करना या कम करने का निर्णय डॉक्टर ही लेंगे।
तो जैसा अभी 60 साल की उम्र वालों का जो सेकंड राउंड चल रहा था उसमें कहा गया था कि 45 साल की उम्र से ऊपर जिन लोगों को गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग हैं उन लोगों को वैक्सीन लेनी है। अभी थर्ड राउंड में मान लीजिए कोई यंगस्टर है, अस्थमा का पेशेंट या बीपी का पेशेंट, तो क्या ऐसे लोग भी वैक्सीन ले पाएंगे?
जी हाँ, ऐसे लोग भी वैक्सीन ले पाएंगे। अब तो आपने देखा होगा इसको लगातार इसका दायरा बढ़ाए जाने के निर्णय के स्वरूप में सर्टिफिकेशन की भी आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है।
अच्छा।
तो बहुत ही क्रांतिकारी और बदलाव ला रहे हैं ताकि इसके दायरे को बहुत फैलाया जा सके, और जैसा आपने कहा कि उम्र की कोई बहुत प्रतिबद्धता नहीं है, अगर वो डॉक्टर को समझते हैं कि उसकी आवश्यकता है तो विशेष परिस्थिति में उन्हें लगा दिया भी जा सकता है।
अस्थमा से बात हुई, डायबिटीज वाले व्यक्तियों को भी क्या वैक्सीन जल्दी से जल्दी लेनी है?
हाँ, डायबिटीज वाले व्यक्तियों को भी वैक्सीन लेना है, बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि जरूर कुछ खाकर ही वैक्सीन लें। आस्थमा और डायबिटीज के मरीजों के लिए मेरा एक सुझाव रहेगा कि कुछ खा के अवश्य जाएं।
अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन बहुत ज्यादा गर्म है, तो जो लोग ड्रिंक्स लेते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं उन लोगों को बिल्कुल प्रतिबंधित है कुछ दिनों तक, ये कहाँ तक सही खबर है?
देखिए, मैं वैज्ञानिक आधार पे उसकी कोई इंटरेक्शन नहीं आई है, लेकिन आप उसको किसी भी दवा के स्वरूप में, वैक्सीन के स्वरूप में अगर लेते हैं तो धूम्रपान, सिगरेट या अल्कोहल, क्योंकि ये लीवर बीमारियों को और लंग्स पे असर डालती है और ये दोनों ही हमारे प्रतिरोधि के वाहक हैं या ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इन्हें प्रतिबंधित रखा जाना चाहिए। इनका सीधा सीधा अगर उससे संबंध नहीं भी है तो प्रतिरोधी क्षमता की कमी लाने में ये एक कड़ी साबित हो सकती है, अर्थात प्रतिबंध तो अवश्य करना चाहिए और संयम बरतना चाहिए।
ये तो वैसे भी हमेशा ही संयम बरतना चाहिए और प्रतिबंधित होना चाहिए, वैक्सीन के साथ इस बात को यूं भी हमें नहीं जोड़ना चाहिए। अच्छा, कैंसर पीड़ित लोग भी हमारे क्षेत्र में बहुत सारे हैं, उन लोगों को वैक्सीन के लिए क्या नियम है?
कैंसर पीड़ितों को भी वैक्सीन देना है, लेकिन वो जिस दवाई पे हैं, दवाई के भी कैंसर के अलग अलग, जैसे कैंसर के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं, तो उसी के हिसाब से दवाइयों का निर्धारण भी अलग अलग होता है। तो कुछ दवाइयां जैसे मेथोट्रेक्सेट है, स्टीरॉइड्स है या रिटुक्समिब है, ऐसी कई दवाइयां हैं जो उन्हें आपको वैक्सीनेशन के 2 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते बाद उसे चालू करना है। तो डॉक्टरी सलाह सही, जैसा मैं पुनः दोहरा रहा हूं, कैंसर पीड़ितों को या विशेष दवाई वालों को अपने डॉक्टरी सलाह से ही वैक्सीन की तिथि तय करना चाहिए कि वो उसकी अवधि 2 हफ्ते बाद होगी और दवाई कम किया जाना है या बंद किया जाना है, तो वो निर्णय स्वयं का ना होकर डॉक्टरी सलाह के अंतर्गत ही होना चाहिए।
बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने वाले लोगों को भी वैक्सीन देनी है?
जी हाँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट को भी देनी है, लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 3 महीने के बाद, लगभग 8 से 10 हफ्ते या 3 महीने रखने से, तो लगभग 3 महीने के बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट वालों को भी वैक्सीन देनी है।
अच्छा, बहुत सारी छोटी बड़ी सर्जरी जो है लोग अपनी पोस्टपोन करा रहे हैं या जहाँ पे पोस्टपोन हो सकती है, किसी किसी को बिल्कुल इमरजेंसी में सर्जरी करवानी पड़ गई है, तो इन लोगों के लिए वैक्सीन के क्या नियम है?
देखिए, बहुत ही सामयिक सवाल पूछा आपने, जो जनमानस में इस दुविधा की संशय की स्थिति बनी रहती है, जिन्हें सर्जरी के लिए जो जा रहे हैं उन्हें भी वैक्सीन लेना है, लेकिन सर्जरी के 2 हफ्ते पहले, अगर वो प्लांड सर्जरी है तो उसके कम से कम 2 से 3 हफ्ते पहले वे वैक्सीन लगा लें और उसके बाद फिर सर्जरी करवाएं।
अच्छा, दीप, 1 महीने से करीब लोगों के लिए 60+ लोगों के लिए वैक्सीनेशन करना शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ घर के बच्चे, कुछ घर के बुजुर्ग लोग रोक रहे हैं कि नहीं नहीं मत करो, पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। तो वृद्ध लोगों को वैक्सीन लगाने के प्रति जो संदेह है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे उसके लिए?
वृद्ध लोग तो हेल्थ केयर वर्कर्स के समान ही प्रथम पंक्ति के वॉरियर्स हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा संक्रमित होने की संभावना उन्हीं की है, और वृद्ध लोगों को बीमारी से बचाना और ओवरऑल जो सामाजिक और पारिवारिक स्थिति है उसको देखते हुए मैं तो यही संदेश दूंगा कि वृद्ध लोगों में वैक्सीन लगाने के प्रति जो भी संदेह है वो निराधार है और उन्हें तो प्राथमिकता के आधार पर पहले वैक्सीन लगवाना चाहिए।
अच्छा, तो उनको भी क्या डॉक्टर से पूछ के या उनकी क्या स्थिति है, किसी को कभी बुजुर्ग को कुछ छोटी मोटी कभी बीपी बढ़ा है, कभी लूज मोशन हो रहे हैं, तो ऐसे में भी क्या कभी भी लगाया जा सकता है?
नहीं, कभी भी नहीं, इसलिए मैंने कहा कि चूंकि अब ओपन हो चुका है दायरा, तो हमें कम से कम 1 से 2 हफ्ते पहले डॉक्टरी सलाह ले लेनी चाहिए कि इमरजेंसी की सलाह कि कब वैक्सीन लिया जाना है और उसके आधार पर, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर बिना चूक के वैक्सीन लेना है।
दिमागी बीमारी वाले लोगों को भी वैक्सीन दिलवानी है?
हाँ, ये भी एक सवाल काफी मुझे अपने अस्पताली चिकित्सा कार्य के दौरान आता है, इन्हें भी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जो दिमाग से थोड़े से व्यथित से परेशान से या कमजोरी है कुछ नसों की या दिमाग की, उनकी मनोदशा और खराब होने की संभावना रहती है, अतः मैं पुनः कहता हूँ दिमागी बीमारी वालों को भी वैक्सीन लेना चाहिए।
अच्छा, जैसे जो दिल के रोगी होते हैं या फिर जो लोग और खून पतला करने वाली दवाइयाँ लेते हैं, उनके लिए कोई खास नियम?
नहीं, उनके लिए भी वही सामान्य है, उन्हें भी वैक्सीन लेना है। जो जैसे आपने खून पतला करने की बात कही, एस्पिरिन है या क्लोपिडोग्रेल है, जो ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं, उन्हें भी वैक्सीन दिल के मरीज, उन्हें भी ये वैक्सीन लेना चाहिए।
अच्छा, जैसे एक डोज ले ली है वैक्सीन की, उसके 1 महीने बाद या 6 हफ्ते 8 हफ्ते बाद वो भी ली जा रही है, तो क्या एक डोज के बाद व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा फ्री समझे कि पूरी तरह से अपने आप को मान सकता है कि हम वैक्सीनेटेड हो चुके हैं?
संज्ञा जी, आपने एक बहुत ही सामयिक पुनः सवाल पूछा। एक्चुअली ये जो बढ़ने के कारण है, इसमें एक फॉल्स सेंस ऑफ प्रोटेक्शन भी है। आदमी वैक्सीन लूंगा यह सोच कर ही अपने आप को संक्रमण मुक्त मान ले रहा है और वो फैल रहा है। जो पहला डोज ले लिए हैं वे भी अपने आप को ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्रह्मास्त्र या कोई कवच कुंडल पा गए हैं सुरक्षा का, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हें भी पूरे डोज लेने हैं और सुरक्षा के वो 3 मानक, जो हाथ धोना, मास्क पहनना, मास्क लगा के रखना और 2 गज दूरी, ये सब के नियम पालन करने ही है। वे जो व्यवस्थाएं हैं या प्रचलित सुरक्षा के मानक है वे कहीं नहीं गए हैं। यह वैक्सीन हमें फॉल्स सेंस ऑफ प्रोटेक्शन न दे, ये सिर्फ प्रोटेक्शन दे, हमें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति और अपने सतर्कता में चूक नहीं लानी है।
अच्छा, लोगों को जैसे एक जगह से दूसरी जगह सफर करना है बाई ट्रेन या बाई रोड, अब पिछले साल से स्थितियां काफी बदल चुकी हैं, इस समय फिर से कोरोना की दूसरी लहर के बाद स्ट्रिक्टनेस सरकार और सब तरफ से बहुत हो रही है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, यथासंभव इमरजेंसी होगा तो आप इमरजेंसी की पर्ची अवश्य साथ में रखें, जो आपके घर परिवार में कुछ घटित हो रहा है, वो किस कारणवश जा रहे हैं, बिना प्रयोजन न निकले, गाड़ी के कागजात के साथ साथ अपना वैक्सीनेशन स्टेटस और अपना वैक्सीन यथासंभव उम्र के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर आप वैक्सीन लगवा कर ही निकलें, ताकि आपको रोके जाने पर या पूछे जाने पर आप अपने कार्य का प्रयोजन बता सकें। तो पहला अपना वैक्सीन स्टेटस तैयार रखें और किस प्रयोजन से आप जा रहे हैं उसका कारण मेडिकल या अन्यथा जो भी वाजिब कारण हो उसे साथ रखकर ही निकलें, और यथासंभव जहां तक संभव हो सके अपने यात्रा को टालें जब तक कि वो बहुत अत्यावश्यक न हो।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमेश, आपने इतनी अच्छी और सटीक जानकारी हमारे श्रोताओं को उपलब्ध करवाई है। परिजनों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद संजय जी।
हर परिजन एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज।
अभी आप सुन रहे थे वैक्सीनेशन के तीसरे चरण और विभिन्न गंभीर बीमारियों में कब और कैसे करवाएं वैक्सीनेशन, इस संदर्भ में अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष माइक्रोबायोलॉजी एवं प्रभारी वायरोलॉजी विभाग शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर के डॉक्टर रमेश मूर्ति से संज्ञा टंडन की बातचीत।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पण।